श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय की शुरुआत कल हुई थी, इस जन्माष्टमी के उपलक्ष पर होने वाले कृष्ण कथा में। हम देख चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को पूरी तरह से विमोहित कर दिया था। ब्रह्मा जी को बहुत पश्चाताप हुआ और ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुतियां अर्पण की भगवान के चरण कमलों में। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा जारी रखी, अपनी लीलाएं ग्वाल बालों के संग में वो करते रहे। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कुमार लीला समाप्त कर ली और पौगंड अवस्था में वो प्रवेश किए, तो उस समय वहां वृंदावन में क्या अवस्था थी, भगवान श्री कृष्ण के उठने बैठने के ढंग में, उनके बोलने में, उनके व्यवहार में, उनके कार्यों में अंतर आने लगा, थोड़ी बहुत परिपक्वता का प्रदर्शन करने लगे। हालांकि फिर भी पौगंड अवस्था या 6 साल की अवस्था भी उम्र कम ही है, लेकिन फिर भी कौमार अवस्था के हिसाब से एक थोड़ी बहुत परिपक्वता दिखाने लगे। और यही समय था कि भगवान अब वत्सपाल से बढ़कर गोप हो गए, वत्सप से गोप बने वो। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गवों को चराना आरंभ किया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के सहित जाते थे वृंदावन में। ग्वाल बाल मित्र हमेशा उनके साथ में रहते थे और इस प्रकार से वो गायों को चराने ले जाते थे।
ततश्च पौगंडवयाश्रितौ व्रजे बभूवतस्थौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ, अभी पशुपाल बने, गवों को चराकर वन में जा रहे थे। सखभी समम, अकेले नहीं जाया करते थे, उनके साथ में बलराम जी और अन्य गोप ग्वाल बाल वो भी जाते थे। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं इस कथा का रस बढ़ाते हुए, पदैर वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतुः। वृंदावन की भूमि तो पहले से ही पुण्य है, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श वृंदावन के भूमि पर हुआ, पुण्यम अतीव चक्रतुः, और भी पुण्य हो गया। तो वास्तव में सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं कि भूमि देवी, माता भूमि, कितनी भाग्यशाली थी कि उनके शिरा के ऊपर, उनके सर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श हुआ। और वास्तव में इसकी वजह से उन्होंने एक ऐसे दिव्य आनंद और हर्ष का अनुभव किया जिसका वर्णन करना कठिन है। तो ये भूमि देवी का सौभाग्य था। इस प्रकार से भूमि देवी ने अपने कई कई जन्मों के तपस्या की सफलता को प्राप्त कर ली, जिसके सर पे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श होता है उसके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण जब वन में प्रवेश करते थे तो नंगे पैर जाया करते थे, इसके पीछे भी कारण है। थोड़े समय पहले जब
नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को वत्सों को गाय के बछड़ों को चराने का अवसर दिया था तो माता यशोदा ने वात्सल्य प्रेम से कृष्ण से कहा था कि अभी तुम्हें पदत्राण पहनने होंगे, जूते पहनने होंगे, यहां जब तक तुम घर में आंगन में खेलते हो तो फिर सब ठीक है, लेकिन जंगल में तो बहुत कांटे होते हैं, बहुत पत्थर होते हैं और तुम्हारे पैर तो कितने कोमल हैं, नाजुक हैं, तो उनको दर्द पहुंचेगा, चोट पहुंचेगी, तो तुम चप्पल पहन लो, ये लो अच्छे से जूते पदत्राण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मां हमें ये बात बताओ, हम किसके सेवक हैं? अब वृंदावन में सभी लोग किसके सेवक होते हैं? गाय के सेवक। इसलिए वृंदावन में हर चीज गाय की इर्द गिर्द घूमती रहती है। गोवर्धन उनको कहते हैं, जो वहां रहते हैं उनको कहते हैं गोप या गोपी, यहां तक कि उनके रहने का स्थान था गोकुल, और कृष्ण का नाम भी है गोपाल, गोविंद, हमेशा गाय से संबंधित। तो वृंदावन के जो भी निवासी थे वो गाय के सेवक है, गाय से इतना प्रेम करते थे, गाय के बिना रह नहीं सकते थे, गाय थी उनका सबसे बड़ा धन था। तो श्री कृष्ण ने कहा हम गाय के सेवक हैं ना, तो मां ने कहा अवश्य हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जब प्रभु जूते नहीं पहनता और सेवक अच्छी तरह से जूते पहन के जाए, ये क्या अच्छी बात है? तो माता यशोदा समझ गए कृष्ण क्या बोलना चाहते, तो कहने लगी अरे बेटा ये तो पशु है और इनको तो आदत है ऐसे वृंदावन में चलने की, वो तो जंगल में प्राय जाया करते हैं और उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है, भगवान ने उनके पैरों को ऐसे बनाया है कि मजबूत होते हैं जिससे कि उनको ज्यादा कष्ट नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी वृंदावन में कांटे तो हैं, पत्थर तो हैं, उनको भी चुभते होंगे, तो अगर वो नहीं पहन रहे हैं तो मैं कैसे पहन सकता, मैं नहीं पहनूंगा। तो आखिर माता यशोदा को मानना ही पड़ा और फिर माता यशोदा ने कहा ठीक है, यूं ही खाली पैर नंगे पैर जाना। लेकिन इतना होते हुए भी यशोदा माता और अन्य जो भी गोपियां हैं उनको बहुत कष्ट होता था मन में, दिन भर यही सोचती रहती थी कि कृष्ण के नाजुक जो चरण कमल हैं अभी उनको शायद चोट पहुंचती होंगी, अब वृंदावन की भूमि वहां जंगल में कितनी कठोर है, और इस प्रकार से गोपियां हमेशा चिंतन में रहती थी। इसको कहते हैं कृष्ण भावना, 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करना। जब कृष्ण रहते थे तो अवश्य वो कृष्ण का स्मरण करते ही थे क्योंकि कृष्ण को आंखों के सामने देखते थे, लेकिन जब कृष्ण भगवान जंगल में जाते थे उस समय भी कृष्ण का स्मरण करते थे, और उस समय जो स्मरण हुआ करता था वो और भी ज्यादा तीव्र हुआ करता था। इसको विप्रलंब कहते हैं, जो विरह में सेवा की जाती है भक्ति में, वो भक्ति या वो प्रेम अधिक गाढ़ या तीव्र हो जाता है, और वृंदावन के सबसे उत्कृष्ट प्रेमी भगवान श्री कृष्ण के गोपियां थीं। तो ऐसे विरह में विप्रलंब में दिन भर वो कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते थे, अरे अब क्या होगा, अब अगला कदम कृष्ण रखेंगे, वहां कोई कांटा ना चुभ जाए। तो इस प्रकार से ये वृंदावन की कृष्ण भावना का वर्णन है, वृंदावन के ब्रजवासियों के भक्ति की महिमा है ये कि हमेशा कृष्ण के बारे में सोचा करते थे। अभी हम देख चुके हैं कि कृष्ण भगवान ने अघासुर का वध कर लिया था और ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया था, लेकिन ग्वाल बाल वगैरह वो थोड़े बहुत शायद घबरा गए होंगे, कृष्ण के मन में ये विचार था तो सोचा उनके मन को बहाने के लिए हम बहलाने के लिए हम उनको ताल वन में ले जाएंगे। तो ताल वन की ओर कृष्ण बढ़ रहे थे। अभी वन तो कई हैं वृंदावन में, वैसे 12 प्रमुख वन हैं, 5 जो कि जमुना जी के पूर्व दिशा में हैं और 7 जो कि जमुना जी के पश्चिम दिशा में हैं। बताया जाता है कि जो पूर्व दिशा में जो 5 वन हैं वो हैं भद्रवन, बिल्ववन, लोहवन, भंडीरावन और महावन, और पश्चिम दिशा में जो सात वन है वो है महावन, ताल वन, कुमुद वन, बहुल वन, काम्य वन, खंडेरा वन और वृंदावन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण वन है। वास्तव में ब्रज भूमि में, ब्रज मंडल में केवल 12 वन नहीं है, आचार्यों ने 137 वन ढूंढ निकाले हैं और ये वन सारे बहुत सुंदर हैं। कृष्ण लीला की सहायता करने के लिए ये उपयुक्त हैं पूरी तरह से। तो भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल में प्रतिदिवस वन में अपने गौओं को आगे रखते हुए अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग में प्रवेश किया करते थे और ऐसे करते करते भगवान की कैसी परिस्थिति थी, कैसे दिखते थे, ये भी आगे चल के श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं। सुंदर श्लोक है 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, इसमें माना जाता है कि श्रीमद् भागवत में से ये सुंदर से सुंदर श्लोकों में से है। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयः कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण के वन में प्रवेश करने का वर्णन सुखदेव गोस्वामी विस्तार में कर रहे हैं। दिखने में श्री कृष्ण कैसे लग रहे थे? बरहा आपीडम, बरहा मतलब मोरपंख, अपीडम मतलब सर का आभूषण। तो भगवान श्री कृष्ण के सर का आभूषण क्या था? मोर का पंख। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े सोने के किरीट वो पहनते थे, वो द्वारका में जाकर वो पहनने लगे। इसलिए जब सूर्य ग्रहण का समय हुआ और द्वारका से कृष्ण, बलराम और यदुकुल के सदस्य कुरुक्षेत्र आए थे, वहां पर ब्रजवासी भी आए थे उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए, तो उस समय ब्रजवासियों को कृष्ण का ये रूप पसंद नहीं आया। सोचने लगे कि ये क्या सोने का किरीट और राजा, बड़े राजा के रूप में आए हैं, उसमें सारथी, घोड़े, रथ और कितने सारे नौकर चाकर धूमधाम से बैंड बाजे से आ रहे हैं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको मोर मुकुट वाले श्री कृष्ण चाहिए, बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण चाहिए। तो इस प्रकार से ये वृंदावन में कृष्ण का रूप एक ग्वाल बाल का साधारण रूप है। ऐसे सरलता में एक सौंदर्य है, एक मिठास है, जो कि द्वारका के शान और शौकत में, ऐश्वर्य में नहीं है। तो ये मोर मुकुट, मोर पंख जो है कृष्ण का आभूषण हुआ करता था। बरहा पीडम नटवर, नट मतलब जो नृत्य करते हैं, उनमें से वर सबसे श्रेष्ठ। वैसे शिवजी को नटराज कहा जाता है क्योंकि शिवजी का नृत्य जो है वो तांडव नृत्य सृष्टि के संहार के समय होता है। वैसे बीच में शिवजी भी तांडव नृत्य करते हैं। आपको कृष्ण लीला में याद होगा बाणासुर नाम का एक असुर था, भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष करता था, लेकिन उसने शिवजी की उपासना की। उसके 1000 भुजाएं थे, सहस्र भुज, और श्री कृष्ण शिवजी, क्षमा कीजिए, वो जब नृत्य कर रहे थे अपने कैलाश पर्वत के ऊपर, तो बाणासुर ने जाके अपने 1000 भुजाओं से ढोलक बजाई, मृदंग बजाया, और इस प्रकार से 500 मृदंग बजाने से अच्छे अच्छे तान धुन में शिवजी प्रसन्न हुए और भी उत्साह से वो नृत्य कर सके। तो शिवजी भी बड़ी अच्छी तरह से नृत्य करते हैं, इसलिए उनको भी कभी कभी नटराज बताया जाता है। लेकिन शिवजी से भी श्रेष्ठ नृत्य करने वाले हैं श्री कृष्ण, इसलिए उनको नटवर कहा जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। वपुः, उनका शरीर दिव्य है। बिभ्रत वासः, वो पहन रहे हैं कपड़े, वास मतलब कपड़े, किस तरह के कपड़े? कनक कपिशम, पीतांबर, पीतांबर का वर्णन हो रहा है। कनक मतलब स्वर्ण रंग का, कपिशम पीले रंग का। वै जयंतीम च मालाम, और फूलों की माला पहन रहे हैं। कैसे दिखता है ये माला, क्या है? वै जयंती माला, वैजयंती माला कृष्ण भगवान की विशेष माला है। पांच प्रकार के रंग बिरंगी फूलों से बनी हुई होती है ये वैजयंती माला और नीचे घुटनों तक पहुंचती है ये। तो ये वैजयंती माला बहुत सुंदर है दिखने में, बल्कि लेकिन जब कृष्ण भगवान के गले में यह लटकता है तो माला का सौंदर्य बढ़ जाता है। यह कृष्ण के सौंदर्य की विशेषता है। संसार के लोग आभूषण कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं स्वयं उनका सौंदर्य बढ़ाने के लिए। कृष्ण भी आभूषण माला इत्यादि पहनते हैं, लेकिन इन आभूषणों से कृष्ण का सौंदर्य तो बढ़ता है लेकिन ज्यादा उन आभूषणों का सौंदर्य बढ़ता है, क्योंकि वो कृष्ण के ऊपर है। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि आभूषण माला इत्यादि इनका सौंदर्य बढ़ जाता है कृष्ण के ऊपर होने की वजह से। तो दोनों एक दूसरे को सौंदर्य को बढ़ाते हैं। रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन, वेणोर अपने वेणु बजाते हैं, रंध्रान उसमें जो छेद है, कृष्ण भगवान के अलग अलग बांसुरियां जिसमें अलग अलग छेद होते हैं, रंध्रान वेणोर अधर अपने होठों से सुधा अपूरयन, सुधा मतलब अमृत, वो अपने होठों से उन रंध्रों के उन वेणु के रंध्रों में छेदों में वो क्या भर रहे हैं, अमृत अपूरयन भरते जा रहे हैं। इसलिए वेणु गीत 21वें अध्याय में वर्णन है कि गोपियां हमेशा वेणु से ईर्ष्या करते हैं कि वेणु को ही सब अमृत का पान करने को मिल रहा है। और इस प्रकार से कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी कितने काव्यात्मक ढंग से इस बात को समझा रहे हैं। वो केवल कह दिए होते कि कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन कैसे कह रहे हैं, रंध्रान वेणोर अधर सुधया अपूरयन, वो वेणु के छेदों में अमृत भर भर के डाल रहे हैं। ये काव्यात्मक दृष्टि से वही कहने की बात है कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन उनके होठों से जो निकलता है वो अमृत है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति गोप वृंदे, गोप वृंद मतलब अपने गोपों के साथ में, ग्वाल बाल मित्रों के साथ में वृंदारण्यम प्राविशत वृंदावन प्रवेश कर रहे हैं। स्वपद रमणम जो कि उनके चरण कमलों से आभूषित जो भूमि है, जिससे कि वो भूमि अभी बहुत ही भाग्यशाली हो गई, रमण करने के लिए कृष्ण भगवान अपने गोप गणों के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य हुआ करता था, हर दिवस जब श्री कृष्ण वन में प्रवेश करते थे तो वृंदावन के सारे निवासी उस दृश्य को देखने आते, आंख फाड़ फाड़ के देखते कृष्ण को, और कृष्ण को बलराम को अपने हृदय में बांध कर रख लेते, फोटो निकालकर लिख लेते। फोटो बल्कि ऐसा है कि कागज है वो एक नए दिन वो फोटो उतना रहेगा नहीं, उसकी ताजगी रहेगी नहीं, लेकिन वृंदावन के निवासी उनके हृदय का कैमरा ऐसा था कि एक कृष्ण का फोटो लेते थे हमेशा हृदय में रह जाता था, लेकिन फिर भी बार बार फोटो खींचने की इच्छा होती थी उनको। इस प्रकार से ये दृश्य बड़ा सुंदर मनोहर होता था और फिर कृष्ण भगवान अंदर प्रवेश करते थे। और फिर यहां अब आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, आगे अंदर वृंदावन के वन में जाने के बाद क्या परिस्थिति होती थी, वहां क्या देखते थे, वहां पर भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से प्रवेश करते थे, यहां दूसरे श्लोक में वर्णन करते हैं। तन्माधवो वेणु मुदीरयन् वृतो, गोपैर्गृणद्भि स्वयशो बलान्वितः, पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत्, विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। तन्ते माधव कृष्ण का नाम है, तो सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को माधव कहकर संबोधित कर रहे हैं। यहां तात्पर्य में सनातन गोस्वामी पाद के टीका का वर्णन आ रहा है। बताया जा रहा है कि माधव शब्द के
चार अर्थ होते हैं, और भी कई अर्थ हो सकते हैं। इनमें से चार श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने समझाए हैं। माधव तो हम बार बार इसका उच्चारण करते हैं, हर रोज जय राधा माधव हम गाते हैं। मा धव, मा मतलब लक्ष्मी और धव मतलब पति, तो माधव शब्द लक्ष्मी पति को संबोधित करता है, कृष्ण जो कि लक्ष्मी देवी के पति हैं। गोलोक वृंदावन में तो हजारों कोटि कोटि लक्ष्मी देवियां कृष्ण की सेवा करती हैं। ये एक अर्थ होता है माधव का। दूसरा अर्थ होता है जो मधुवंश में आता है। भगवान श्री कृष्ण को कभी मधुसूदन कहते हैं, मधु नाम के असुर का वध करने वाले। लेकिन और एक भी मधु है जो कि कृष्ण भगवान के पूर्वज रहे। आप जानते हैं कि द्वारका में रहने वाले कई वंश थे, जैसे वृष्णि वंश, भोजक, भोज, अंधक इत्यादि। तो इनमें से वृष्णि वंश, तो ये राजा वृष्णि हुए थे, कृष्ण भगवान के पूर्वज। वृष्णि राजा के पिता का नाम था मधु, तो इसलिए मधु के वंश में जो आने वाले उनको माधव कहते हैं। जिस प्रकार से रघु नाम के एक राजा थे सूर्यवंश में, और उनके आगे जैसे जैसे पीढ़ी चलती गई उस वंश में श्री रामचंद्र आए, इसलिए प्रभु रामचंद्र को राघव भी कहते हैं। रघु के वंश में आने वाले को राघव कहते हैं, उसी प्रकार से मधु के वंश में आने वाले को माधव कहते हैं। तो ये दूसरा अर्थ है माधव का। तीसरा अर्थ ये है कि माधव शब्द वसंत ऋतु को भी कहलाता है। और इस वसंत ऋतु में विशेषता क्या है कि फूल वगैरह खिलते हैं, बहुत सुंदर दृश्य होता है, और मधुर हवा, शीतल हवा भी बहती है। तो श्री कृष्ण जब भी वृंदावन के वन में प्रवेश करते थे तो उस समय मानो कि वसंत ऋतु खिल गई है, सारे फूल इत्यादि फल खिल जाते थे। तो ये भी माधव शब्द का अर्थ है, जिनका वन में या किसी भी जगह में प्रवेश करने से मानो वसंत ऋतु हो गई है। चौथा अर्थ ये होता है कि मधु अर्थात बहुत मीठा, मधुर, मधुर रस मतलब श्रृंगार रस, माधुर रस। जो भगवान का संबंध गोपियों के साथ में था उसको मधुर रस कहते हैं। जो मधुर रस का आस्वादन करने वाले को भी माधव कहते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने इसको समझाया है। तो देखिए आचार्य गण किस प्रकार से रस की वृद्धि करते रहते हैं, इसलिए आचार्यों के पथ पे ही हमें चलना चाहिए, हमें स्वतः अपने कोई टीका नहीं देखनी चाहिए। जो आचार्यों ने कहा है उसी प्रकार से हमें शास्त्रों को समझने का प्रयास करना चाहिए, न कि अपने मनगढ़ंत ढंग से। तो आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, तन माधवो वेणुम उदीरयन। वेणु बजाते बजाते कृष्ण भगवान जाते थे। जब से कृष्ण भगवान ने वत्सों को चराना आरंभ किया था तब से वेणु भी बजाना आरंभ किया था। और जैसे कि कल चर्चा कर रहे थे कि जब कृष्ण भगवान अपने कौमार अवस्था के अंत में थे तो उस समय वो एक ऐसे बांसुरी बजाया करते थे जो कि बहुत पतली थी और जो पत्तों से बनी हुई थी, पेड़ों के पत्तों से बनी हुई थी। ये रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के वेणु का भी बहुत विस्तार में वर्णन करते हैं, सुंदर सुंदर वर्णन है। वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण प्रवेश करते थे वृंदावन में तो सारे ब्रजवासी आनंद के सागर में डूब जाते थे। वो वेणु की ध्वनि इतनी मोहक थी, इतनी मनोहर थी कि कोई भी उसको सहन नहीं कर सकता था, और ब्रजवासी तो खास करके। कृष्ण भगवान के तीन प्रमुख तरह के बांसुरियां हुआ करती थी, ऐसा रूप गोस्वामी बताते हैं। एक को कहते हैं वेणु, जो कि 6 इंच लंबी हुआ करती थी और उसमें 6 छेद हुआ करते थे। अभी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग समय कृष्ण भगवान अलग अलग बांसुरी का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये वेणु भी है, ये कृष्ण भगवान की सामग्री ही है। तो जैसे एक व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कपड़े पहनता है, अलग अलग जूते पहनता है, अलग अलग गाड़ियों में जाता है,
उसी तरह से कृष्ण भगवान भी अलग अलग बांसुरी अलग अलग समय बजाया करते थे। तो एक प्रकार की बांसुरी हुई वेणु, दूसरे प्रकार की बांसुरी थी मुरली, जो कि 18 इंच अर्थात डेढ़ फुट लंबा था, जिसमें चार छेद हुआ करते थे। तो देखिए कितने विस्तार में भगवान के बारे में यहां ज्ञान है हमारे शास्त्रों में। अन्य कितने धर्म है यहां केवल ये बताया जाता है भगवान शक्तिशाली है, भगवान सर्व हर चीज करने में समर्थ है, लेकिन भगवान दिखते क्या है, वो करते क्या है, वो कहते क्या है, उनकी सामग्री क्या है, वेणु बजाते हैं तो कैसे है उनकी वेणु, कितने प्रकार के वेणु है, ये सारा ज्ञान यहां दिया हुआ है। भगवान की पहचान पूर्णतया की गई है। तो ये दूसरे प्रकार की बांसुरी मुरली। तीसरे प्रकार की मुरली है बांसुरी है वंशी, जो कि 15 इंच लंबी है और जिसमें 9 छेद है। और ऐसे वंशी के भी कई और तरीके होते थे। जब ये वंशी और ज्यादा थोड़ा लंबा हो जाता तो उसे महानंद या सम्मोहिनी कहते थे, और ये रत्नों का बनाया हुआ होता था। महानंद से भी जब लंबी होती थी बांसुरी तो उसको आकर्षणी कहते थे, और ये स्वर्ण का बनाया हुआ होता था। और जब वो बांसुरी आकर्षणी से भी लंबी हुआ करती थी तो उसको वंशुली या आनंदनी कहा करते थे। और ये आनंदनी जब कृष्ण भगवान बजाया करते थे तो गोपगणों को ग्वाल बालों को बहुत ही मनोरम लगता था, वो तो आनंद के सागर में ही डूब जाते थे। इस प्रकार से भगवान ऐसे अलग अलग तरह की बांसुरी बजाया करते थे। बताया जाता है कि बांसुरी बजाना ये भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष गुण है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि श्री कृष्ण के 64 गुण होते हैं और ये परिपूर्णता में श्री कृष्ण के पास है। इनमें से केवल 50 गुण जो है, और वो भी बहुत ही कम मात्रा में, अपने अपने पात्रता के अनुसार जीवों में रहते हैं। और ब्रह्मा जी को ये 50 गुण अधिक मात्रा में होते हैं, कृष्ण को तो परिपूर्णता में, लेकिन ब्रह्मा जी जीवों में से सबसे ज्यादा इनको ये 50 गुण है। शिव जी को इन 64 गुणों में से 55 गुण है। नारायण को 60 गुण, केवल श्री कृष्ण को 64 गुण। इसका मतलब है श्री कृष्ण भी नारायण से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही नारायण के उद्गम हैं। तो श्री कृष्ण में ऐसे 4 गुण हैं जो कि नारायण में भी नहीं है, विष्णु रूप में भी नहीं है। वो कौन से 4 गुण हैं? एक है लीला माधुरी। ये 4 माधुरी हैं, 4 गुण जिनसे कि श्री कृष्ण के माधुरी को बढ़ जाता है। इसलिए कृष्ण भक्ति में और विष्णु भक्ति में या नारायण भक्ति में थोड़ा अंतर होता है। अंतर किस बात का? रस का, क्योंकि कृष्ण भक्ति में माधुर्य या मिठास ज्यादा है। तो सबसे पहले मधुर बात कृष्ण की क्या है? लीला माधुरी, कि हमेशा अपने भक्तों के साथ में ऐसे सुंदर प्रेममयी लीलाएं करते हैं, जैसे कि खास करके ग्वाल बाल मित्रों के संग में। तो लीला माधुरी विशेष करके उन लीलाओं का वर्णन करता है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के संग में किया, गोचारण लीला, जैसे अब हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी विशेषता भगवान की है प्रेम माधुरी। इसका मतलब है कि भगवान हमेशा ऐसे भक्तों के साथ में घिरे हुए होते हैं जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक प्रेम का सागर है। खास करके ये गोपियों को संबोधित करता है, गोपियों का प्रेम। गोपी सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका है भगवान श्री कृष्ण के। और तीसरा है भगवान का रूप माधुरी। इतना सुंदर है भगवान श्री कृष्ण कि सारे जगत को आकर्षित करते हैं। उनका सौंदर्य नारायण के सौंदर्य से भी बढ़कर है, क्योंकि कृष्ण के सौंदर्य में एक ऐसा मिठास है जो कि नारायण में भी नहीं है। हालांकि नारायण भी अति सुंदर है, श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में भी उनके सौंदर्य का भी वर्णन आता है, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान का सौंदर्य उनसे भी अधिक है। और चौथी विशेष बात जो कि श्री कृष्ण में है और जो कि नारायण में भी नहीं है, वो है वेणु माधुरी। वो अपने वेणों या बांसुरी को बजाते हैं, और जब वो बांसुरी बजाते हैं तो उसके क्या कहने, सारे ब्रह्मांड स्तब्ध हो जाता है, सारे ब्रह्मांड को विमोहित कर देते हैं कृष्ण भगवान अपने बांसुरी से। और इतने प्रवीण हैं बांसुरी बजाने में कि जब कोई भी सुनते हैं तो उसको समझ नहीं पाते हैं, यहां तक कि बड़े बड़े देवता भी समझ नहीं पाते। ब्रह्मा जी जब अपने आसन पर बैठे हुए थे कमल पुष्प के ऊपर, वो बिल्कुल विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, बोल नहीं पाए कुछ इस ध्वनि को सुनकर। और शिव जी अपने डमरू बजा रहे थे, डमरू बजाना बंद कर देते हैं, वो जब सुन लेते हैं ये बांसुरी की ध्वनि, और अन्य जो भी देवता हैं इस ध्वनि को सुनकर वो बिल्कुल इतने भ्रांति में पड़ जाते हैं, वो समझ नहीं आता उनको कि ये आवाज क्या है, ये संगीत किस तरह से बज रहा है, और बहुत विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं इसको, लेकिन पूरी तरह से वो भ्रमित हो जाते हैं, और अंततः वो अपना सर झुकाते हैं और फिर उस ध्वनि को प्रणाम करते हैं अपने ही मन में। तो ये है वेणु का प्रभाव बड़े बड़े देवताओं के ऊपर। और ऋषि मुनि जैसे कि चार कुमार आदि, वो जो ध्यान में बैठे हुए होते हैं उनका ध्यान भी भंग हो जाता है। तो ये है तीव्रता भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की। इस प्रकार से अनंत शेष भी प्रभावित हो जाते हैं। अनंत शेष आप जानते हैं बहुत स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनके फणों के ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं। लेकिन जब अनंत देव कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनते हैं, वो भी झूमने लगते हैं, और उनको पता नहीं चलता कि ये कौन सी उत्कृष्ट आवाज है, ये क्या ध्वनि है। अलग अलग रागों में भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं, और इतनी प्रवीणता से कि किसी को समझ में नहीं आता। और अगर बड़े बड़े देवी देवताओं की भी ये हालत हो जाती है, तो ब्रजवासी जो कि इतने पास थे श्री कृष्ण के, और जब वो कृष्ण की बांसुरी को सुनते थे, तो उनकी क्या दशा हुई होगी, किस प्रकार के आनंद के सागर में वो झूमते होंगे, वो तैर रहे होंगे, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ये बांसुरी बजाते बजाते अंदर जाया करते थे। रूप गोस्वामी पाद ने इस प्रकार से भगवान के बांसुरी का वर्णन किया है। वैसे वेणु गीत जो 21वां अध्याय है, इसमें और भी विस्तार में वर्णन होगा, आगे चल के शुकदेव गोस्वामी भी इसका वर्णन करने वाले हैं। तो आगे चल के वेणु दृश्य अपने मन में देखिए, कृष्ण भगवान प्रवेश कर रहे हैं, माधव बांसुरी बजाते बजाते प्रवेश कर रहे हैं, और उस समय क्या हो रहा है, वृतो गोपैर, उनके इर्द गिर्द गोपगण हैं, और गोपगण भी क्या कर रहे हैं, स्वयशो गृणद्भिः, भगवान श्री कृष्ण के यश का गान कर रहे हैं, गृणद्भिः, ये गोपों का काम है, कृष्ण का भक्तों का काम है हमेशा कृष्ण का गुणगान करना। सारे ब्रजवासियों का एक ही काम हुआ करता था, कृष्ण का गुणगान करना दिन भर, चाहे बाहरी दृष्टि से कोई दूसरा काम भी क्यों न कर रहे हो। गोपियां भी माखन को निकालती थी और मंथन करती थी दूध का, लेकिन फिर भी हर कार्य में, घर में हो, गायों के साथ में हो, ब्रजवासियों की विशेषता खूबी ये थी कि हर समय वो कृष्ण का गुणगान करते थे, और हर वस्तु को कृष्ण से जोड़ते थे, और हर चीज देखने पर उनको कृष्ण की याद आती थी। ये है प्रेम का लक्षण। प्रेम मतलब जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उससे हम जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं उनका स्मरण आता है। जैसे कि एक माँ जब बच्चा घर से चले जाता है तो बच्चे के जूते देखती है, बच्चे को याद करती है, और कोई उसका पलंग देखती है, अरे यहां मेरा बच्चा सोया करता था रात को, तो हमेशा हर वस्तु को देखकर बच्चे की याद करती है, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है बच्चे के प्रति। तो ब्रजवासी भी ऐसे ही किया करते थे, हर जगह जहां भी देखते थे वो कृष्ण को देखते थे। तो गोपगण जो कि ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण के संग में होते थे, भला वो कृष्ण के गुणगान से कैसे रहित रह सकते थे। सोचिए कि गोपगण कितने भाग्यशाली थे कि वृंदावन में उनको ये सौभाग्य मिला कि कृष्ण के साथ सबसे ज्यादा समय बिताने का, क्योंकि कृष्ण भगवान सुबह सुबह नाश्ता लेकर, प्रसाद लेकर निकल चलते थे वन के लिए, गायों को चराते थे, गाय फिर इधर उधर चरने के लिए चले जाते थे,
और कृष्ण भगवान अपने गोपों के साथ में, मित्रों के साथ में लीला करते थे, खेलकूद करते थे, क्रीड़ा। और फिर शाम को गायों के संग में आते थे। फिर शाम के टाइम में गायों को दोहन करना इत्यादि बहुत और काम रहते थे। फिर घर में आ जाते थे, प्रसाद लेते थे, सो जाते थे। फिर रात में जाकर वो रासलीला करते थे। लेकिन वो थोड़ी देर बाद, जब थोड़े और आगे चल के वो लीला आरंभ किए। लेकिन गोपों के संग में कितने घंटे सारा दिन बिताया करते थे। देखिए गोपों का स्थान क्या है। इसलिए हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ये कोई साधारण बालक है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पहले भी इसी श्रीमद भागवत के दशम स्कंद के 12वें अध्याय में वर्णन कर चुके हैं कि ये गोपगण कौन है, इनका महात्म्य क्या है, कितने महान है ये। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेन साकं विचहरो कृत पुण्य पुंजा। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे कोई सताम जो ऋषि मुनि हैं, जो कि भगवान के निराकार रूप में ब्रह्म में सुख का अनुभव करते हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, सुख की अनुभूति भगवान के निराकार में वो लेते हैं, समझते हैं कि जो भगवान है वो निराकार है। तो ठीक है, वो ऐसा समझते हैं भगवान को। दूसरे हैं जो कि क्या सोचते हैं कि भगवान हमारे प्रभु हैं। दास्यम गतानाम पर दैवतेन, जो दास्य रूप में भगवान की सेवा करते हैं, क्या सोचते हैं कि हम दास हैं और भगवान हमारे प्रभु हैं, पर दैवतेन, इसलिए वो दास्य गति में जाते हैं। तीसरे होते हैं मायाश्रितानाम, जो माया में पड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण को जानते नहीं है, वो क्या सोचते हैं कृष्ण को नर दारकेण, दारक मतलब एक बच्चा, सोचते हैं कि एक साधारण बच्चा है, एक साधारण मनुष्य है। माया के प्रभाव में आकर ये लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये ग्वाल बाल, वो कृष्ण के बारे में क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि ये तो अपना मित्र है, ना उसे भगवान समझते थे, ना उसे कोई ऐसा अपना प्रभु समझते थे, वो अपना मित्र समझते थे कृष्ण को। साकम विजहरहु, इसलिए कृष्ण के साथ मजा कर रहे थे, लीला कर रहे थे, खेलकूद क्रीड़ा कर रहे थे। तो ये ग्वाल बाल, उनको ये सौभाग्य मिला। कैसे मिला? पुण्य पुंजा, उन्होंने बहुत सारा धन एकत्र किया था, पूंजी थी उनके पास। किसकी पूंजी? पुण्य कृत, ऐसे पुण्य उन्होंने किए थे ढेर सारे, जिसकी वजह से उनको ऐसा सौभाग्य मिला कि श्री कृष्ण को अपना मित्र बनाकर उसके साथ में यूं ही खेलते रहते थे। कभी कुश्ती करते थे, कभी एक मित्र कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाता था, कभी कृष्ण उनके कंधे पर चढ़ जाते थे, कभी कृष्ण का मजाक उड़ाते थे तो कृष्ण उनका मजाक उड़ाते थे। ये हैं तो भगवान, लेकिन भगवान के संग में इतनी निकटता कि वो श्री कृष्ण को कभी छेड़ते भी थे, ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ उनको? ये ग्वालबाल ऐसे कृष्ण को साधारण अपना मित्र समझते थे। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने इन गोपगणों का गुणगान किया हुआ है, और ये गोपगण ये कृष्ण का गुणगान हमेशा करते थे। सब यशो बलन्वितः, बल अन्वितः, बलराम के साथ में भी जाते थे। सुखदेव गोस्वामी बार बार थोड़े थोड़े श्लोकों की बात में फिर भी बलराम जी की बात हमेशा किया करते हैं, ये याद रखने के लिए कि बलराम भी जाया करते थे कृष्ण के साथ में। और जब बलराम जी का नाम नहीं लेते हैं सुखदेव गोस्वामी, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि बलराम जी नहीं गए थे उस दिन, जब अगासुर का वध हुआ था उस दिन बलराम जी साथ में नहीं गए थे, क्योंकि बलराम जी का जन्मदिवस था और माता रोहिणी ने बलराम जी को घर में रख दिया था कि अभी तुम्हारा स्नान करना है और आज तुम्हारे कई पूजा वगैरह करनी है, तुम्हें आज जन्मदिवस है, आज मत जाना गायों को चराने के लिए। तो बलराम घर बैठे थे, लेकिन उसी दिन यह भयंकर असुर आया था अजगर का रूप धारण करके, और कृष्ण भगवान ने अकेले उसका वध कर दिया था। लेकिन बलराम नहीं थे रक्षा करने के लिए। और आप जानते हैं, जैसे कि हम पिछले साल में चर्चा कर चुके थे, कि एक साल पूरे ब्रजवासियों को पता नहीं चला अगासुर के वध के बारे में, क्योंकि उसी दिन जिस दिन की अगासुर का वध हुआ था,
ब्रह्मा जी भी मोहित होकर सोचने लगे कि मैं ये कृष्ण की परीक्षा लूंगा, ये कैसे हो सकता है कि ये भगवान है, ये तो ग्वाल बालू है, ये तो छोटा साधा साधारण अन्न खा रहा है ग्वाल बालों के संग में बैठकर। तो ब्रह्मा जी ने अपने योग शक्ति से ग्वाल बालों को छुपा दिया, वत्सों को छुपा दिया एक गुफे में, और सोचा कि मैं कृष्ण को भ्रमित कर दूंगा मेरी योग शक्ति से। लेकिन हुआ ये कि खुद ब्रह्मा जी ही भ्रमित हो गए, अपने ही शक्ति के शिकार स्वयं बन गए। ब्रह्मा जी की ये दशा हो गई। और ब्रह्मा जी जब अपने एक क्षण के बाद लौट कर आए, जिस समय कि यहां पृथ्वी लोक पर पूरा एक साल बीत चुका था, उस समय ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, और ये दिखाया कि उन्होंने अपने आप को सारे ग्वाल बालों और वत्सों के रूप में विस्तारित किया था। तो क्योंकि पूरा एक साल ठीक बीत गया था जिस दिन ब्रह्मा जी लौट कर आए थे, जिस दिन ब्रह्मा जी विमोहित हुए थे, उस दिन भी बलराम जी का जन्मदिवस था, ठीक एक साल बाद आए थे, तो जिस दिन ब्रह्मा जी ने चोरी किए थे वत्सों के ग्वाल बालों के, उस दिन भी बलराम जी का जन्मदिवस था, वो नहीं आए थे। और ठीक एक साल बाद जब ब्रह्मा जी मजा देखने को आए थे कि देखते हैं अब ये कृष्ण क्या कर रहे हैं, उस दिन भी बलराम जी का जन्मदिवस था, इसलिए दोनों दिवस पर बलराम जी साथ में नहीं थे, जबकि ये बहुत दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी ब्रज में, इसलिए बलराम कुछ कह नहीं पाए। लेकिन ये ग्वाल बाल मित्र एक साल बाद जब ब्रह्मा जी विमोहित हुए, तब वो जाकर खबर सारी उन्होंने फैला दी ब्रज में कि कृष्ण ने अघासुर का वध किया है, ब्रह्मा जी आए थे, सारे वर्णन उस समय करने लगे ग्वाल बाल। तो इस प्रकार से बलराम जी ज्यादातर जाया करते थे, एक आध बार कभी कभी ऐसे खास कोई मौके पर रोहिणी देवी उनको रोककर रख देती थी, क्योंकि हमेशा ब्रजवासी बलराम जी को भेजते थे कृष्ण के संरक्षण के लिए, देखो कृष्ण छोटा है तुम बड़े हो, तुम हृष्ट पुष्ट हो, कृष्ण तो नाजुक है कोमल है, उसको न जाने हर बार असुर जो है आक्रमण करते रहते हैं, हमेशा उसके साथ में रहना, साथ छोड़ना नहीं, ऐसे आदेश देकर हर रोज बलराम को भेजते थे साथ में। इसलिए यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बल अन्वित पशुन पुरस्कृत्य, पशु मतलब गायों को पुरस्कृत आगे रखकर वो चल रहे थे। आजकल लोग खास करके जब हम गोवा के रास्ते में जाते हैं तो पशुओं को आगे ले चलकर नहीं ले जाते हैं, पीछे रख के, क्यों, उनको बांध दिया होता है और रस्सी खींचते खींचते घसीटते बेचारों को ले जाते हैं, कहां ले जा रहे हैं, कतलखाने में ले जाते हैं। आजकल ये दशा है, उल्टी दशा हो चुकी है, कृष्ण भगवान पहले गायों को आगे चलने देते थे उनके मन अनुसार, और फिर पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए ग्वाल बालों के संग में चलते थे, लेकिन आजकल गौएं पीछे हैं, बांध के उनको रखते हैं, खींचकर घसीट कर ले जाते हैं कतल खाने। तो ये है विडंबना आजकल के जमाने की। जिन गौओं की रक्षा, जिन गौओं की सेवा भगवान श्री कृष्ण से की, जिन गौओं से इतना प्रेम भगवान श्री कृष्ण ने किया, उन्हीं के भूमि में इस भारतवर्ष में आज इतने गौओं की हत्या हो रही है, कितने दुर्भाग्य की बात है। और इस देश के लोग ये नहीं जानते कि अपने ऊपर वो कितने बड़ा दुर्घटना ला रहे हैं, ऐसा करने से कितना तकलीफ होगा इस देश में, और हो भी रहा है, उसकी कल्पना लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अज्ञान से जान नहीं पाते, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उनकी। और ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान लोग या ईसाई लोग गाय की हत्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिंदू समाज के लोग करते हैं, जो सनातन धर्म का पालन जिनको करना चाहिए वही लोग आजकल ज्यादा हत्या कर रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं इसमें, तो हमें कृष्ण भगवान की लीलाओं से उपदेश ग्रहण करने चाहिए, ये केवल मनोरंजन की बात नहीं है, ये हृदय के शुद्धिकरण की बात भी है, और उपदेश की ग्रहण जो उपदेश ग्रहण करने योग्य है ऐसे उपदेश की बात भी है। और पशुओं को आगे रखकर क्या करते थे, पशव्यम आविशत कुसुमाकरम वनम, वो वन में आविशत वन में प्रवेश करते थे। तो वन की परिभाषा, वन का वर्णन यहां पर है पशव्यम, वन में ऐसे ऐसे सुंदर वस्तु थे जो कि पशुओं के खाने के लिए बिल्कुल योग्य थे, बिल्कुल। भय से पशु हृष्ट पुष्ट रहा करती थी। पशुओं को कोई वैद्य की डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी क्योंकि वो केवल घास खाते थे और वन में हमेशा ऐसे वनस्पतियां हुआ करती थी। वनस्पति भी घास के बीच बीच में रहा करती थी और गायें इन वनस्पतियों को भी खाती थी। तो वनस्पतियों को खाने की वजह से ये एक तो प्रकार के रसायन या औषधि हो जाती थी और जो भी बीमारी अगर बाय चांस अगर अकस्मात हो भी जाए किसी गाय को तो ये सारे वनस्पतियां खाने की वजह से ये हमेशा अच्छे स्वास्थ्य में रहती थी। तो ये भी एक खूबी है, इसलिए गायों को चराना ये बहुत आवश्यक है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, विदेशी गाय लाते हैं, फिर इंजेक्शन से उनको गर्भवती करते हैं हमारे देशी गायों को, और फिर उसके बाद में उनको चराने नहीं ले जाते बल्कि गौशाला में ही रखकर उनको नाना प्रकार के फैक्ट्री में उत्पादन किए गए चारा को खिलाते हैं, फिर उसमें नाना प्रकार की चीजों को मिश्रण करते हैं, कभी कभी हड्डियों का, कभी कभी नाना प्रकार की चीजें, इसको फिश मील, बोन मील, ये वो सब कहते हैं, अलग अलग उनको नाम देते हैं। पश्चिम देशों से ये सारी चीजें आ रही हैं और हमारे लोग आंख बंद करके इसको स्वीकार कर रहे हैं। गाय को तो केवल घास खाना चाहिए, वनस्पति खाने चाहिए, लेकिन आज गायों को मांस इत्यादि सब खिला रहे हैं। इसलिए विदेश में हम देखते हैं कि ऐसे जबरदस्त क्या कहते हैं उसे एपिडेमिक को क्या कहते हैं, जो बीमारियां हैं वो फैल रही हैं, जैसे कि मैड काउ डिजीज, पागल गाय की बीमारी, जिसमें क्या होता था कि गाय पागल हो गए और उनके दूध को जो पीता था वो भी पागल हो जाते। मतलब ये पागलपन किसका है, मनुष्य का है, गाय का नहीं है। बेचारे गाय तो खाते थे, उनको जो दिया जाता था वो खाते थे, देने वाले पागल व्यक्ति तो मनुष्य थे। तो इसको मैड काउ डिजीज नहीं, मैड ह्यूमन डिजीज बोलना चाहिए। पागल तो हुए मनुष्य कि गाय जैसे पवित्र प्राणी को ऐसे सब गंदी चीजें खिलाते थे, तो पागल नहीं होंगे तो और क्या होगा। वैसे भी अभी गाय को चराने नहीं ले जाते, वहीं पर रहकर ऐसा विष खिलाते हैं, और दूसरी ओर वनों को काटते जा रहे हैं हम लोग, और फिर गोचर भूमियां भी जो हो करती थी उसमें बड़े बड़े फैक्ट्रियां आ गई, बड़े बड़े रहने के लिए जगह आ गए, और गोचर भूमि जो हुआ करती थी आजकल सरकार ने छीन लिया है, शासन ने, और अलग अलग लोगों को बांट दिया है। हमारे प्रिय राजनीति के नेता जो है इसका हरण कर लिया है, जो कि वास्तव में गायों के लिए है। कितना पाप ये लोग कर रहे हैं इनको नहीं मालूम, और अगले जीवन में इनकी क्या गति होगी अगर वो जानते तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते। तो गायों को मुक्त छोड़ना चाहिए जंगल में और उनकी रक्षा करनी चाहिए, कहीं शेर आके खाए नहीं, कहीं गलती से गाय कहीं खड्डे में गिरे नहीं, कुछ चोट नहीं पहुंच जाए। तो इसके लिए जो ग्वाला होता है वो उसको साथ में झूमना चाहिए, लेकिन केवल वन में अगर वो चरे घूमे तो गाय स्वस्थ रहेगी। गाय को भी थोड़ी कसरत चाहिए, गाय को भी थोड़ी बहुत ताजी हवा चाहिए, ताजा पानी चाहिए, ताजा अन्न उसके लिए भोजन चाहिए। तो अगर गाय को हम वन में छोड़ेंगे खुले मन से, अगर गाय चरने लगेगी इस तरह से और ग्वाल बाल साथ में रहेगा संरक्षण करने के लिए, तो गाय इतनी खुश हो जाएगी कि प्रचुर मात्रा में दूध देगी। गाय के भी आखिर भावनाएं होती हैं, जब गाय खुश होती है तो बहुत दूध देती है, जब गाय उदास हो जाती है, निराश हो जाती है, तो फिर दूध नहीं देती है गाय, स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आज लोग कितने कृत्रिम तरीकों को अपना रहे हैं, इंजेक्शन देना। आजकल एक इंजेक्शन है जिसको ऑक्सीटॉक्सिन ऐसा कुछ है, ऑक्सीटॉक्सिन, जो सारे जो दूध वाले हैं वो हर रोज उनको इंजेक्शन देते हैं इस रसायन का, जिससे कि दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या करता है ये औषध कि गाय के अंदर एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करता है जो कि वैसे ही होता है जबकि गाय गर्भवती होती है। तो गर्भवती होते समय जब बच्चे का जन्म होता है तो कितना दर्द होता है, तो कल्पना कीजिए कि हर रोज ये गाय को इंजेक्शन देते हैं, तो गाय को उतना दर्द होता है हर रोज जितना कि उसे गाय के बछड़े का जन्म करते समय होता है, और केवल इसलिए कि उनको दूध का उत्पादन बढ़ाना है गाय से। तो ऐसे कृत्रिम पद्धतियों को स्वीकार करके ये लोग कितना पाप कर रहे हैं गो माता के प्रति इनको नहीं मालूम। ये अवर्णनीय है, इतना घोर अंधकार और अज्ञान। कृष्ण भगवान ने कभी भी गाय को इंजेक्शन नहीं दिया, ऐसे अत्याचार कभी भी गाय के ऊपर नहीं किया, बल्कि गाय की रक्षा करते रहे, इसलिए गोपाल गोविंद नाम उनका आया। तो फिर हमें उसी प्रकार से गाय की सेवा करनी चाहिए जैसे कि कृष्ण भगवान ने किया था। तो ऐसे वनों में हमें उनको चरने देना चाहिए। ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसे गोचर भूमि वन को हड़प करके वो बैठ जाए, या अगर वन भी हो तो वनों में गायों को चरने नहीं देते हैं। आजकल ये कानून है, गायों को वनों में नहीं जाना चाहिए, और टैक्स देना पड़ता है। अगर अनुमति दी भी जाती है तो उनको टैक्स देना पड़ता है, कहते हैं कि पर्यावरण के ऊपर खतरा है। देखिए कितनी मूर्खता की बात करते हैं सरकार। जितनी ज्यादा बात करें हम विषय से हट जाएंगे, इसलिए बात विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो खैर, भगवान श्री कृष्ण ऐसे पशुओं को ले जाते थे वन में, और वन में भी ऐसे सारी सामग्री थी जिसका खान पान करके गायें बड़े संतुष्ट और खुश रहती थी। कुसुमाकरम वनम, कुसुमों का आकर था जंगल में, सुंदर सुंदर फूल बगीचे, इतना रम्य वातावरण की गाय उनमें रहकर भी खुश हो जाती थी। ग्वालबाल भी खुश हो जाते थे इसका सौंदर्य देखकर। विहर्तु कामः, और फिर जाकर वहां सुंदर विहार करने की इच्छा रखते थे। विहर्तु कामः, किस प्रकार की लीला या विहार करना चाहते थे श्री कृष्ण, इनका सुखदेव गोस्वामी वर्णन आगे चल के इस अध्याय में करने वाले हैं। तो फिर आगे श्री कृष्ण सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि आगे चल के जब प्रवेश किया श्री कृष्ण ने वन के भीतर, तो उन्होंने क्या देखा, कैसा दृश्य था उनके सामने।
तन्मंजु घोषालि मृगाद्विचाकुलम् महन् मनः प्रक्षेपयः सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्षरन्तुं भगवान् मनोदधे।
तत्, उस वन में जब प्रवेश किया तो क्या देखा। मंजू घोष, मंजू मतलब बहुत ही मनोरम, घोष मतलब ध्वनि आवाज। तो जैसे प्रवेश किया उन्होंने तो उनको ये बहुत सुंदर सुंदर मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। कौन सी ध्वनि, अली मृग द्विज, इन तीनों के, आकुल मतलब भरा हुआ था, इनके आवाजों से वन भरा हुआ था। अली मतलब वो मोहम्मद अली नहीं, अली मतलब ये भृंग भौरें, भौरें को संस्कृत में अली कहते हैं, इसलिए कभी कभी भक्तों का नाम भी होता है अली कृष्णदास, तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अली हैं। अली कृष्ण, अली मतलब भृंग, और भृंगों की आवाज हमेशा, ये भृंग जो होते हैं मधुर आवाज निकालते हैं, और उनके पंखुड़े पंखे भी जोर जोर से हिलते हैं, पंखों के हिलने से भी वो आवाज आती है, ध्वनि आती है। आज भी अगर किसी वन में जाएं तो आप से ऐसी आवाज सुनेंगे, दूर में दूर से आती है हवा, लेकिन इतने सारे भृंग एक साथ में झुंड में होते हैं इसलिए ऐसी तेज आवाज आती है। और फिर किसकी आवाज थी, मृग पशु जैसे हिरण इत्यादि बीच बीच में वो आवाज किया करते थे। और फिर द्विज, द्विज मतलब यहां पर ब्राह्मण नहीं लेकिन पक्षियों को संबोधित करता है, पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है। क्यों, द्विज, द्वि मतलब दूसरा, दो, और ज मतलब जन्म लेना। ब्राह्मणों को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका दूसरा जन्म संस्कार के माध्यम से होता है, संस्काराद्धि भवे द्विज, इसलिए संस्कार के बाद व्यक्ति द्विज हो जाता है। जन्मनाद जायते शूद्र, जन्म से शूद्र होता है, लेकिन संस्काराद्धि भवे द्विज, संस्कार उपनयन संस्कार जब हो जाता है ब्राह्मण का तो वास्तव में वो द्विज या ब्राह्मण बन जाता है। इसलिए ये दीक्षा जो है ये दूसरा जन्म है, जिसने दीक्षा ली है वो द्विज हो जाता है। उसी प्रकार से पक्षी भी दो प्रकार के जन्म लेते हैं, पहले तो जो उसकी मां है वो अंडा देती है बाहर, तो पहला जन्म अंडा बाहर चले जाता है पक्षी के शरीर का, फिर अंडा जब खुल जाता है उसमें से जब पक्षी बाहर आता है तो वो दूसरा जन्म, इसलिए पक्षियों को भी द्विज कहते हैं। तो एक पक्षी भी वहां हुआ करते थे। कैसे कैसे पक्षी, आजकल यहां हमें केवल कौओं की आवाज सुनाई पड़ती है शहरों में, का का का। लेकिन वृंदावन में ऐसी आवाज नहीं थी, कोयलों की मधुर आवाज, कू कू, और मयूर, कोकिल कूज हंस सारस गणा मयूरे किणा। तो मयूर, कोकिल, हंस, मयूर, ऐसे सब प्राणियों पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ती थी। तो कल्पना कीजिए शुकदेव गोस्वामी कितने सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं वृंदावन के वन की हालत। और वहां जब गए तो ये भंवरे और फिर पशु, हिरण और पक्षियों की ध्वनि सुन रही थी, एक स्वर्गीय वातावरण। उसकी तुलना में हमारी दशा यहां पर शहर में देखिए, पहले तो वो राक्षसी आवाज रेलगाड़ी की, और फिर से उसके ऊपर और दबाकर वो जो उनके बजाते हैं, आवाज बजाते हैं, भू करके आवाज लगाते हैं वो हॉर्न की, बीच रात में, दिन में, कभी भी, नरक की आवाज है ये तो। और फिर यहां गाड़ियों का पॉम पॉम, और हल्ला गुल्ला रिक्शा के मोटर का, और ये प्रदूषण, फिर लोग चिल्ला रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, ये तो नरक है हम जिसमें रहते हैं। लेकिन भगवान ने कितनी सुंदर प्रकृति को बनाई है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही लेकर जाते थे अपने गायों को, ग्वाल बालों को, और इस नरक को हम स्वर्ग समझ रहे हैं। देखिए आजकल के आधुनिक काल के लोगों की मूर्खता कितनी है। अगर उनको आप ऐसे कोई रम्य स्थान में ले जाएं, एक दिन में, एक घंटे में बल्कि भाग के आएंगे। यहां तक कि जो बंबई के लोग हैं, बेलगाम में भी नहीं रह सकते, क्योंकि बंबई की तुलना से यहां ये तो स्वर्ग है, कितनी शांति है, रह नहीं सकते। और बेलगाम के लोगों को भी आप गांव में ले जाइए, वहां से दौड़कर वापस आएंगे, और गांव के लोगों को जंगल में ले जाइए, वो भी भाग कर जाएंगे। आजकल गांव के लोग शहर में आना चाहते हैं, और शहर के लोग बड़े शहर में जाना चाहते हैं, बड़े शहर के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, ये परिस्थिति है। और अमेरिका के लोग यहां आना चाहते हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, हम ये नहीं सोचते कि वो लोग यहां क्यों आना चाहते हैं। केवल पश्चिम देशों के चमक धमक से हम इतने प्रभावित हो गए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया है कि किसी न किसी तरह से हमें वहां अमेरिका जाना है, अपने प्राण को भी त्याग दें लेकिन वहां पहुंचना है। वहां जाकर प्राण त्याग करें कोई बात नहीं, ये दशा है। तो भगवान ने इतना सब हमें दिया है, इस आध्यात्मिक संस्कृति को छोड़कर, इस सुंदर प्रकृति को छोड़कर हमने एक ऐसा नरक अपने लिए बना लिया है, तो उसके क्या कहने। और फिर आगे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, महन मनह प्रख्य पयह सरस्वता। सरस या सरस्वता मतलब एक तालाब या कुंड, और पयह, पयह मतलब यहां पानी। तो पानियों के सुंदर तालाब हुआ करते थे वृंदावन में, और इसकी तुलना प्रख्य शुकदेव गोस्वामी करते हैं महन मनह। महत मतलब कोई महात्मा, कोई भगवान का भक्त, कोई संत। मनह उसका मन, एक महान भक्त का मन कैसे होता है, बिल्कुल शांत होता है। आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंति यद्वत तद्वत कामयम प्रविशंति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। दूसरे अध्याय में गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन की दशा कैसे होती है, बिल्कुल शांत। जिस प्रकार से सागर, सागर में इतने सारे नदियां प्रवेश करती हैं, जाती हैं, बरसात के समय बाढ़ आता है तो ये नदियां जो हैं ज्यादा पानी सागर में ले जाती हैं, और गर्मी के समय में नदियों में पानी कम रह जाता है, लेकिन फिर भी सागर में न तो कोई घटन होता है न कोई वृद्धि, सागर वैसे का वैसे शांत रह जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो साधुओं का, भगवान के भक्तों का मन रहता है, हमेशा शांत रहता है, और उसी प्रकार से यहां वृंदावन के भीतर जब कृष्ण भगवान ने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि ऐसा ही सरस, सरस्वता, पयह सरस्वता, शांत बिल्कुल वातावरण। और इसके आगे वातेन पवन से क्या हो रहा है, वातेन जुष्टम शतपत्र गंधिना। शतपत्र मतलब हजार पंखुड़ियों वाले जो कमल पुष्प होते हैं उनके सुगंध को ये वात अर्थात पवन ले जा रही है, इसलिए हर जगह ये सुगंध वन में है, जैसे ही वन में प्रवेश करो केवल कमल पत्रों का पुष्प जो सुगंध है वो मिलता था, यहां आकर गंध कुछ और ही मिलता है, गाड़ियों के धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, अलग अलग तरह के गंदगी का धुआं हमें सब मिलता है आने से, लेकिन वृंदावन में केवल कमल पुष्पों का गंध, अन्य सुंदर सुंदर पुष्पों का गंध मिलता था। और आगे निरीक्षिरंतुम भगवान मनोदधे, इसको देखकर भगवान का मन आकर्षित हुआ, मन उस ओर देखने लगे, भगवान कितनी सुंदर बात है, बांसुरी बजाते बजाते जा रहे हैं, दृश्य को अपने मन में कल्पना कीजिए, बांसुरी बजाते जा रहे हैं, देख रहे वन के अंदर कितनी सुंदर है बात वातावरण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि कृष्ण भगवान ने देखा कि वृंदावन के इस वन में ये ऐसी अवस्था थी कि पांचों इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ये वृंदावन पूरी तरह से समर्थ था। किस प्रकार से? अपनी आंखों से ये देख सकते थे कि कितना सब सुंदर है, रम्य है, तो आंखें पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती थी, और कान इन भौरों के, इन हरिणों के और इन पक्षियों के सुंदर सुंदर आवाज सुनकर जो सुनने की जो प्रवृत्ति है वो भी कान भी संतुष्ट हो जाते थे। और फिर त्वचा, क्योंकि ये सरस जो था, पयह सरस्वता, उससे पवन जो है गीलापन या थोड़े छोटे छोटे पानी के बूंद उठाकर ये शीतल जल के बूंद शरीर पर गिरते थे, तो शरीर में भी एक प्रकार की शीतलता, ठंडक, आराम मिल जाता था शरीर को, तो शरीर त्वचा भी संतुष्ट हो जाती थी। और हमारे नसिका, वो संतुष्ट किससे हो जाते थे? केवल पुष्पों के सुगंध को ग्रहण करके। और फिर यहां तक ये बताया जाता है कि जो हमारे त्वचा है, त्वचा से और क्या रह गया, कौन सा पांचवा रह गया, जिह्वा, कि हाँ ये पवन जब ले आता था उस गंध को, इस जल को, तो इतना प्रभावशाली था कि स्वाद, अपने स्वाद लेने का जो अंग है जिह्वा, वो भी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता था केवल सूंघने मात्र से ही। तो इस प्रकार से वृंदावन का वर्णन यहां पर शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं बड़े सुंदर ढंग से। आगे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसौनोरुभरेण पादयो स्पृचच्छिखान् वीक्ष्य वनस्पति मुदा स्मयन् इवाहाग्रजमादि पुरुषः। सह भगवान श्री कृष्ण तत्र तत्र सब जगह इधर उधर जहां भी श्री कृष्ण देखते थे तो क्या देखते थे? अरुण पल्लव, लाल रंग के अंकुर, श्रिया जो वन को बहुत सुशोभित कर रहा था, और भी सुंदर कर रहा था, और वन को सुंदर करने के लिए क्या थे? फल प्रसून, प्रसून मतलब फूल, तो ऐसे नाना प्रकार के अंकुर, फल, फूल सब जगह खिले हुए थे, फैले हुए थे, जिससे कि वृंदावन का सौंदर्य बढ़ रहा था। और ये फल कितने थे? आजकल जब हम देखते हैं तो प्राय फल दिखाई भी नहीं पड़ते हैं वृक्षों में, लेकिन वहां वृक्ष कैसे थे? फलों से उरुभारेण पादयोः स्पृशत शिखान, उरुभारेण इतने भारी फल थे कि वृक्ष जो है वो झुके हुए थे पूरी तरह से, पादयोः स्पृशत, मानो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं उनकी शाखाएं, इतने भारी। और इस प्रकार से वनस्पति, ये बड़े बड़े जो गौरव युक्त जो वृक्ष थे उनकी जो भी शाखाएं हैं पूरी तरह से नीचे झुक गई थी। और कृष्ण भगवान जानते थे कि वास्तव में ये वृक्ष मुझे देखकर मेरे चरणों पर प्रणाम कर रहे हैं, आखिर वृक्षों के हाथ पैर तो नहीं है ना, वो कैसे प्रणाम कर सकेंगे? वृंदावन के वृक्ष प्रणाम करना चाहते थे कृष्ण को, तो उनके फल थे, भारी भारी थे, तो उन्होंने झुक लिया, अपने शाखाओं को झुका दिया और जमीन से प्राय स्पर्श किया, मानो कि कह रहे हैं हे भगवान हमारे दंडवत को स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार से कृष्ण को और उनके साथियों को स्वागत कर रहे थे वन के भीतर। और इस प्रकार से ये ऐसे वृक्ष हैं इस अवस्था में, हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। वैसे भी वृक्ष से बहुत कुछ सीखते हैं। तरोर अपि सहिष्णुना, चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं कि तरु के समान हमें सहनशील होना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हर परिस्थिति से गुजरता है लेकिन कभी भी ये नहीं कहता कि मैं ऐसे परिस्थिति में क्यों हूं, सहन करता है। लोग आके उसे काटते हैं, उसकी लकड़ी ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं, फल ले जाते हैं, कितना आक्रमण करते हैं उसे, अकेले में, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, हर तरह के मौसम में बाहर खड़ा रहना पड़ता है, बिना कोई सुरक्षा के, बिना कोई कपड़ों के। और फिर भी इतना होते हुए भी वृक्ष जो है सभी को अपना सब कुछ देता है। वृक्ष ये नहीं कहता तुम लोग हमेशा मेरे पास आते हो, मुझे कष्ट देते हो, मेरी लकड़ी काट के ले जाते हो, अब मैं नहीं दूंगा, अब मैं आज से फल नहीं दूंगा। नहीं, ले जाओ फल फूल जो चाहिए ले जाओ। यह है वृक्ष का उदार हृदय। तो हमें भी ऐसे उदार रहना चाहिए मनुष्य को। जितना हम अपने आप को मुट्ठी में बांध करके रख देते हैं उतना हमारा पतन हो जाता है। जितना उदार हमारा हृदय रहता है उतना हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। और यहां बताया जाता है कि फूलों के वजन से वृक्ष झुके हुए थे। चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण। जब चैतन्य महाप्रभु केशव काश्मीरी का वर्णन सुन रहे थे, जो दिग्विजय पंडित आए थे जिनका बहुत अहंकार था, तो उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया चिंता नहीं करो, इनका घमंड बहुत जल्दी चूर हो जाएगा, नम्रता ही सबसे महत्वपूर्ण है ये संसार में। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति तृण से भी अधिक नम्र बन सकता है और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बन सकता है वही मात्र भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को समझाया कि फलवंत वृक्ष, जिस वृक्ष में बहुत ज्यादा फल होते हैं, और गुणवंत जन, जो गुणवान व्यक्ति होता है, जिसके अंदर जो सद्गुण संपन्न है, ये दोनों झुकते हैं नम्रता से। लेकिन जिस वृक्ष में फल नहीं है और जिस व्यक्ति में अहंकार बहुत है वो सीना तान के हमेशा चलते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं है, नमस्कार नहीं करते हैं। तो जब तक नम्रता हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक भगवान की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे सबक हम इन वृंदावन के वृक्षों से हम प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से वो वृक्ष भगवान श्री कृष्ण, बलराम, ग्वाल बाल और गौओं के सामने वो झुककर उनका स्वागत कर रहे थे। और यहां पे बताया जाता है मुदा स्मयन हसमुख चेहरे से सुस्मिता मुखे न, भगवान श्री कृष्ण की हल्की मुस्कान से भगवान बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? इवह अज अग्र अग्रजम, अग्रजम मतलब इनके बड़े भाई, ज मतलब जन्म, अग्र मतलब पहले, तो जिनका जन्म उनसे पहले हुआ है अर्थात बलराम जी, उनको घेरकर बोल रहे हैं हसमुख चेहरे से, मतलब भगवान अभी थोड़ी हंसी मजाक करने के मूड में हैं। अभी देखिए कृष्ण भगवान अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वृक्ष उन्हीं को नमन कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभी बलराम की ओर मुड़ के बोलने वाले हैं कि देखो बलराम, ये आपको नमन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान बोलने वाले हैं और वो भगवान को, बलराम जी को श्रेय देना चाहते हैं। तो ये भी एक गुण होता है कि हमें श्रेय कभी भी अपने आप के लिए नहीं लेना चाहिए, श्रेय दूसरों को देना चाहिए, भले हमने वो काम किया हो या न किया हो, श्रेय दूसरों को जाता है। महाप्रभु समझाते हैं कि केवल वही व्यक्ति जिनका मन, जिनका हृदय बहुत छोटा होता है, लघु चेतसाम, और जिनकी आध्यात्मिक गरीबी होती है, आध्यात्मिक दृष्टि से जो दिवाले हो गए हैं, केवल वही लोग अपने कार्यों के लिए, अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए श्रेय लेना चाहते हैं। मुझे ये पुरस्कार मिला, मुझे वो मिला, मेरा ये सत्कार हुआ, मेरा वो हुआ, तो केवल लघु चेतसाम। लेकिन हमें उदार चेतसाम होना चाहिए, हमें श्रेय दूसरों को देना चाहिए। और उदार हृदय का मतलब यह भी है कि गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए, गलती भी दूसरों को श्रेय उसका देने ही देना चाहिए, गलती खुद के लिए और श्रेय दूसरों को। और इसके बजाय इतना ही नहीं, अगर दूसरों की गलती के लिए हमें हमारे ऊपर आरोप लगाया जाए उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। यह है उदार चेतसाम, यह है भक्त का स्वभाव। लेकिन संसार में क्या चलता है, दूसरे ने किए हुए काम के ऊपर हम श्रेय लेते हैं और हमारी गलती के लिए दूसरों को दोष देते हैं। तो इसलिए संसार में और भक्तों के समाज में कितना अंतर है, बिल्कुल विपरीत है। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने उदाहरण से दिखला रहे हैं, हालांकि वो अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी बलराम जी देखो आपको नमन कर रहे हैं। तो ठीक है, आखिर एक छोटा सा श्लोक करके फिर हम समाप्त करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं बलराम जी को, श्री भगवान उवाच,
अहो अमी देव वरामरार्चितम् पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् नमन्ति उपादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्।
वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को संबोधित कर रहे हैं, हालांकि इसके पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को सुखदेव गोस्वामी आदि पुरुष कहते हैं, लेकिन इस श्लोक में कृष्ण बलराम जी को संबोधित करके कहते हैं हे देववर। बलराम जी को भगवान कह रहे हैं, खुद को नहीं, आप ही भगवान हैं। और देखो ये सारे वृक्ष जो हैं आपको नमन कर रहे हैं, नमन्ति किस प्रकार से, आपके पदाम्बुजम आपके चरण कमलों में, जो कि अमर अर्चितम जो कि देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं। देवताओं के लिए और एक नाम है, वो है अमर। अमर इसलिए क्योंकि उनकी जीवन की अवधि इतनी लंबी होती है पृथ्वी लोक के तुलना से, तो बहुत ज्यादा हजारों लाखों साल तक देवी देवता जीते हैं, इसलिए हमारी तुलना से प्राय अमर है, वास्तव में अमर नहीं, अमर लोक इसलिए कहते हैं। तो इसलिए अमर अर्चितम, जो अमर या देवता भी जिन पद कमलों को की अर्चना करते हैं पूजा करते हैं उन्हीं पद कमलों को अभी ये वृक्ष भी नमन कर रहे हैं हे बलराम जी। और वृक्ष किस प्रकार से नमन कर रहे हैं, सुमनः फल, उनके जो फूल और फल हैं, अर्हणम दे रहे हैं, उपादाय भेंट दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि हमारा फल हमारे फूल ये सब आपके ही तो हैं, हम आपको लौटा के दे रहे हैं। तो एक उस ठीक उसी प्रकार से हमें भी हमारा सब कुछ कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि पहले से सब है ही कृष्ण का। हे कृष्ण, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारा शरीर, हमारी शक्ति, हमारी योग्यता, तन मन धन सब कुछ आपका है, तो हम आपके चरण कमलों में इसको अर्पण करना चाहते हैं। तो वृक्ष हमें यह भी सिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से श्री कृष्ण के चरण कमलों में सब कुछ अर्पण करना चाहिए। वृक्षों ने कुछ रोक कर नहीं रखा, ये थोड़े से फल हम रखेंगे पास में, यह है शरणागति। तो यहां वृक्ष हमें शरणागति सिखा रहे हैं, भगवान के शरण में जाना मतलब पूरी तरह से जाना, हमारा सब कुछ आपका है, मैं आपका हो गया, यह है भावना, यह भक्त की शरणागति होती है। तो ये वृक्ष सिखा रहे हैं, नमन्ति उपादाय शिखाभिर आत्मनस, और इस प्रकार से अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहे हैं। वास्तव में देखिए ये वृक्ष कितने भाग्यशाली हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण का निजीय संग मिला है, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को करोड़ों करोड़ों जन्म तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता। तो कितने बड़े भक्त हुए होंगे ये, अगर बड़े भक्त नहीं होते तो क्या इतना इतने निकट से कृष्ण का निजी संग मिला होता, बिल्कुल नहीं। और कृष्ण की कितनी सेवा की है इन्होंने, कृष्ण ने उनके फल खाए, उनके फूल से अपने कानों में रख के सुशोभित किया अपने आप को, कभी कभी पेड़ की छाया में बैठे, तो इन वृक्षों को भगवान की सेवा करने के लिए कितना मौका मिला, कितना भरपूर सेवा किया इन्होंने। तो ये क्या कोई साधारण भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बहुत जन्मों से उन्होंने जो भक्ति की थी उसका मीठा फल अब उनको मिला कि उनको ऐसे वृक्ष का जन्म मिलकर वो उनकी सेवा कर पाए। वृंदावन में सब कुछ, हर व्यक्ति, हर प्राणी भगवान का भक्त है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, यहां तक कि वृंदावन का जल, वृंदावन की भूमि, ये सब भगवान के भक्त हैं, क्योंकि वृंदावन में हर चीज चेतन है। यह है चिंतामणि धाम, चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु स्वरूपैरभिपालयन्तम्। यह है वृंदावन की परिभाषा, वृंदावन का वर्णन। इसलिए हर रोज भी हम पढ़ते हैं, श्रीय कांतः कांतः परम पुरुष कल्पतरवो ध्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी। इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण, उनकी सेवा बहुत सारी लक्ष्मी देवियां करती हैं, और ध्रुमा भूमि चिंतामणि, भूमि वहां की चिंतामणि है, और वहां के जो पेड़ हैं कल्पतरु वो सब क्या कल्पतरु डिजायर ट्री, मतलब वो हमारी सारी वांछाओं को पूरी करने वाली हैं। और वहां के जो लोग हैं जब चलते हैं गानम नाट्यम, वो जब चलते हैं तो मानो कि एक नृत्य के बराबर है, और जब वे कुछ वचन बोलते हैं तो एक सुंदर गीत की तरह है। ये है वृंदावन की अवस्था। तोयम अमृतम, और वहां की पानी जो है अमृत के बराबर है। भूमि हर एक रज वहां चिंतामणि है। तो इस प्रकार से वृंदावन में जो भी कुछ है ये सब चिन्मय है, ये सब व्यक्ति हैं, ये सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि महान भक्त के गुण होते हैं, वो अपने आप को महान भक्त कभी सोचते नहीं है, इसलिए वृक्ष जो कि महान भक्त है अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें ये वृक्ष का जन्म मिला जो कि तमोगुण में है, वो केवल हमारे पाप की वजह से हमको मिला है, हमने इतने सारे पाप किए पूर्व जन्मों में कि हमें वृक्ष का जन्म मिला है। साधारणतः ये बात सही है कि जो ज्यादा पाप करते हैं उनको वृक्ष का जन्म मिलता है, लेकिन ये तो कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये तो वृंदावन के वृक्ष हैं जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो ये तो पूर्व जन्म में पापी लोग नहीं थे, बड़े ऋषि मुनि थे, बड़े भक्त थे, लेकिन फिर भी नम्रता से ये अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि कितने दुर्भाग्य है, हमने कितने पाप किए थे, अभी हम यहां पे हैं। इसलिए जो तमोगुण की वजह से जो हमें तरु जन्म यत कृतम, हमें तरु जन्म या पेड़ का जन्म हमें मिला है, और इस तमोगुण के प्रभाव को, इस नीच जन्म से हमें शुद्ध करने के लिए तमो अपहयत्यई, इसको नष्ट करने के लिए हम अभी आपके चरण कमलों में सेवा कर रहे हैं, हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए, ताकि हम तमोगुण से आकर हम आप के भक्ति की स्थिति में हम पहुंच जाए। यह है भक्त की नम्रता। तो यहां पर यह वृक्ष हमें नम्रता भी सिखा रहे हैं कि कैसे हमें अपने आप को तुच्छ ही समझना चाहिए, कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं कितना अच्छा भक्त हूं, नहीं, हमें अपने आप को केवल दूसरों का दास समझना चाहिए, और यह मानना चाहिए कि हमारी भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई है, हम तो केवल भक्ति करने का थोड़ा बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। तो वैष्णवता वृक्ष हमें सिखा रहे हैं, वृंदावन का हर एक कण, हर एक प्राणी हमें भक्ति सिखा सकता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए तो पेड़ है, पेड़ से क्या सीखेंगे, नहीं, ये वृंदावन के पेड़ हैं, इसलिए बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो आगे चलकर जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण आगे चलते हैं, बलराम जी से क्या कह रहे हैं, बनवान जी बलराम जी की किस तरह से गुणगान गा रहे हैं, वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी?